लेकिन आगे अब चलते हैं लफ्ज़ वाइन तोब दू, और अगर तुम जाहिर करो माफी अनफुसिकुम जो तुम्हारे नफ्सों में है, यानी तुम अपने दिल की बातों को जाहिर करो। तुब्दू को जलब से ना ये बाद आल वाव से है, बद बदूफ कहते हैं जाहिर करने को, बदावत शई कहते हैं किसी चीज का वो हिस्सा जो सबसे पहले जाहिर हो। पीछे से अगर गाड़ी आए तो आप देखेंगे सबसे पहले उसकी लाइट्स और बोनट आएगा सामने, फिर उसके बाद बाकी हिस्सा आएगा ना। इसका ऑपोजिट क्या है? तख्तुमून, कतम से। कतम का ऑपोजिट बदूफ है, जाहिर करना। ये जो लफ्ज बद्दू हम कहते हैं ना, बद्दू बदवी, या जैसे आप सूरह तौबा के 11वें पारे में शुरू में पढ़ेंगे अल आराब, तो लफ्ज बदवी भी इसी से है, बद्दू। क्यों? बदवा तुन कहते हैं सहरा को, डेजर्ट को कहते हैं, ये आप थोड़े से लफ्जों के फर्क साथ होते हैं ना। तो शहरी जिंदगी के मुकाबले में देहाती जिंदगी, सहराओं में रहने वाली जिंदगी, सहरा को भी इसीलिए बादिया कहते हैं कि खुला होता है, दूर दूर तक नजर आता है, बीच में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती। तो बदूफ के लफ्ज को जहन में लाइए कि आप अपने दिल के इरादे, ख्यालात, प्लानिंग जाहिर कर दे, सबको पता चल जाए कि आप क्या सो रहे हैं, जो आपके दिल में है वो सबको बता दें, ओपन कर दें, और मैं आज एक जुमला बोल दूं नाराज ना हो, आप उसको फेसबुक पर डाल दें, सारी दुनिया को पता चल गया आप क्या जानते हैं। इन तुब्दू माफी अनफुसिकुम, पहले दिलों की बातें पास जाके पूछनी पड़ती थी, मेरी दोस्त मुझे अपने दिल की बात सुनाओ, बीवी कहती है शौहर को आपके दिल में क्या है, मैं आपको कैसे पढ़ूं, तो अब एक ही जवाब है, फेसबुक पे मेरा प्रोफाइल और उस पर लगी हुई एक पिक्चर देख लो, वो एक पिक्चर बता देगी आजकल आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप सैड हैं, आप रो रहे हैं। तो आज खोल के रख दिया, अच्छी बात है, वैसे वक्त ज़ाया नहीं होता लोगों का, दूर बैठ के पता चल जाता है। एक लाइक का बटन दबा दें, किसी भी चीज़ को लाइक करें, लोग कहेंगे अच्छा इसको लाइक किए, घर इसलिए टूट रहा है कि सिर्फ लड़की ने एक ऐसी तस्वीर लाइक कर दी जिसमें कि मतलब कह लीजिए ससुराली ताल्लुकात में कोई एक ऐसा चक्कर था कि उन्होंने किसी की ऐसी पिक्चर को लाइक कर दिया कि जिसके बाद इनके अपनी सास नाराज हो गई कि इसका तो तेरे ये ख्याल आता है, तू वक्त आने पे मेरे साथ भी यही करेगी। अब आगे से आपको समझे, आप काफी समझदार लोग हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि आज हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, हमारे प्रोफाइल ही पहले से लोगों को बता देते हैं हम कौन है, कैसे हैं, किस जगह है, ना लेना ना देना। 1000 नंबर आप किसी जगह सेव करें, 1000 लोगों की शक्लें घर बैठे देख लें, रिश्तेदारों को तो हम पहले ही जानते हैं, गैरों की तस्वीरें, अब ये जो ग्रुप्स बनते हैं तो उसमें हमें क्या पता कौन ग्रुप आता है, आप उनके प्रोफाइल को देखिए फिर आप जान ले अच्छा ये ऐसी ही है, तो मेरा तो ख्याल तो वैसी ही होगी। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो आज खुल गईं। अल्लाह कहते हैं तो अब दो जो तुम जाहिर करना चाहो, माफी अनफुसिकुम, पीछे हम बात कर चुके हैं अनफुसिकुम नफ्स से है, नफ्स दो तीन मानों में आता है, नून फा सीन से आता है, शख्सियत पर्सनैलिटी, फिर इसी तरह नफ्स से मुराद इंसान की रूह भी होती है, नफीस शख्स जो हम उर्दू में बोलते हैं ना फुलां बहुत नफीस है, वो भी इसी से है, जो आप में से डॉक्टर हैं वो तो जानेंगे, तनफ्फुस निज़ाम तनफ्फुस किसको कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें तनफ्फुस का लफ्ज़ कैसे आ गया, आप देखिए आपके लंग्स क्लियर होंगे ना, साफ होंगे तो आपकी ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल होगी, तो जब गले में रेशा आता है, कंजक्शन होती है या बलगम होती है तो सांस खिंच जाता है ना, तो वही बात फिर नफ्स का लफ्ज़ जो है ना ये किस एंगल में आता है, किसके अंदर वुस्सत और कुशादगी है, यानी हर वो बंदा दिल की वुस्सत और कुशादगी की तरफ इशारा, यहां मुराद इससे दिल है कि जो कुछ भी तुम जाहिर करो अपने दिलों में, ओ तुख्फूहू या तुम छुपा लो, छुपा लो से मुराद किसी से अपनी कोई बात ना जाहिर करो, खुफिया लफ्ज भी इसी से, खाफा या से एलानिया की जिद है, छुपी हुई चीज छुपाना, अख्फा कहते हैं सबसे ज्यादा छुपी हुई चीज, मतलब यह है कि तुम किसी से भी कोई बात शेयर ना करो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने किसी को तो नहीं बताई, बट युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। युहासिब का लफ्ज़ हसीबा यखसुबु से है, हासीनबा गिनने को कहते हैं, काउंट शुमार करना, हसबा यखसुबु भी होता है और हसीबा यखसुबु भी होता है, लतीफ सा नुकता ये लिख लें आपको मजा आएगा, हसबा यखसुबु हो ना तो इसका मानी होता है गिनना, काउंटिंग, अकाउंटेंट हासिब होता है, ठीक है। अगर आप कह दें हसीबा यखसुबु तो इसका मानी होता है गुमान करना, किसी के बारे में ज्यूम कर लेना, ठीक है, यानी फर्क बस सीन के ऊपर जबर और जेर का है, आप इतना नाम भी परेशान हो, यानी इसके दो मानी है, एक में गिनने का मानी है और दूसरा मानी ख्याल करना, आता नहीं कुरान में यखसुबून, क्या तुमने ये गुमान किया, तो अब देखिए सिर्फ सा की जबर जेर से मानी बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप कहते हैं ना हस्बे तौफीक, तौफीक के मुताबिक, तो ये सारे मुख्तलिफ लफ्ज़ होते हैं जो अपनी जगह एक बड़ा खूबसूरत सा इल्म है, लेकिन यह कि बात बोझल होने लगती है। लेकिन यहाँ अल्लाह सुबहाना ताला के लिए जब ये लफ्ज़ हस्ब आता है तो मुराद है कि आपसे हर बात को गिन भी रहे। कुल्ला शैन अख्सई ना हुफी इमाम मुबीन, सूरह बनी इसराइल में आएगा। और वैसे भी यह कि अल्लाह ताला का नाम अल हसीब, अगर आप मैं यहाँ इस टेक्स्ट में बात करूँ कि युहासिब कुम बिहिल्ला से क्या मुराद है, तो पहली बात है कि अल्लाह सब कुछ गिन रहा है। अल्लाह इज काउंटिंग ईच एंड एवरी सिन एंड ईच एंड एवरी गुड थिंग एंड ईच एंड एवरी ब्लेसिंग, जो उसने नेमत आपको दी, कुछ भी दिया, वो सब कुछ अल्लाह ने लिखा हुआ है। अच्छी बातें भी लिखी जा रही हैं, बुरी भी लिखी जा रही हैं, ठीक है, ये मतलब हुआ। और दूसरा मानी युहासिब कुम बिहिल्ला से मुराद ये है कि तुम हो क्या, रियल में तुम्हारी कितनी मजबूरी थी और तुम कितने मजबूर बन के नजर आए लोगों को, कितनी तुम्हारी वाकई तुम कितने मजबूर थे लेकिन लोगों को लगा तुम बिल्कुल मजबूर नहीं हो। डोंट वरी, अल्लाह तुम्हारे बारे में सही गुमान करेगा। यानी हसब और हसीबा दोनों के मानी आगे, कहने का मतलब ये कि तुम्हारी असल सिचुएशन क्या थी, अल्लाह नोज दैट। अब देखिए पास अब हम सारी दुनिया को सच्चे बन के दिखाते हैं, हम बहुत सच्चे हैं, हम इट्स ओके, किसी को जरूरत नहीं। हमारे अपने पाकिस्तानी कल्चर में सफाइयां पेश करने का इतना रिवाज है कि जब तक हमारी सफाई पेश करने में हमारे इर्द गिर्द वाले गंदे ना हो जाए हमें तसल्ली नहीं होती। शौहर की वजह से नहीं हुआ, बच्चों की वजह से नहीं हुआ, सास, घर का माहौल, गाड़ी खराब है, मौसम गंदा है, नाउज़ बिल्ला, यानी हर वक्त हम दूसरों को गंदा करते हैं ताकि हमारी सफाई पेश आ जाए। अल्लाह कहते डोंट डू दिस, तुम्हें जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अल्लाह की नजरों में बड़ा बनना है, वो जानता है। अब आप देखिए कि जिस बंदे को इस बात का यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला मेरी हर बात को जानता है और उसको ही मेरे बारे में बता, तो आपको दूसरे से को बताने की क्या जरूरत है। बस आप देखिए कि डॉक्टर पे जाते हैं तो हम अपनी सेहत का बताते हैं ना, उसके सामने जाके कोई मुकदमा तो नहीं पेश कर देते कि मेरे ऊपर ये किसी ने कर दिया। इसी तरह लॉयर के पास जाकर आपके नाक बड़ी बहती है, गले में सूजन है, ये वो कहेगा प्लीज गो टू एनी डॉक्टर, समझ गए ना। इसी तरह जब हम अल्लाह सुबहान तला के बारे में जान लेते हैं ना कि हिसाब तो उसने लेना है, तो मुझे अल्लाह की नजरों में सच्चा होना है। सीधी सी बात है, एक जुमला लिख लें, जब बंदे को अल्लाह के हिसाब लेने का यकीन आता है ना, तो वो दूसरों की खुशी और ना खुशी को इतना मैटर नहीं करता, कहते इट्स फाइन, अल्लाह नोज दैट, अल्लाह को पता मैं क्या करती हूँ। आपके ऊपर इल्ज़ाम कोई लगाता है, शौहर कहते तुम ऐसी हो वैसी हो, आप कहते इट्स ओके, अल्लाह नोज मैं कैसी हूँ। मेहमान घर में आए हुए और आप अपनी बहू की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, और जब मेहमान जाते हैं तो आप अपनी बहू के साथ बड़े सख्त लफ्ज़ बोलते हैं, लोगों को तो पता चल गया आपने अपनी बहू को बड़ा अच्छा रखा हुआ है, और ऑपोजिट भी हो सकता है, दूसरों के सामने आप अपनी सास को अम्मी जी कहती हैं और अकेले में उनको पूछती भी नहीं है। बट डोंट वरी, योर हासिब को बिहिल्ला, जिसने नंबर्स देने हैं वो पेपर चेक करेगा ना। देखिए ना, पेपर चेक कोई और कर रहा है आपका, मेरा तो मैं जाके दूसरों को जाके बताती रही, अल्लाह की कसम वो गलती नहीं थी, वो मैं जल्दी में लिख दिया, ये कर दिया, वो कहेगा डोंट वरी, मैं क्या करूं, पेपर तो मेरे हाथ में नहीं है। तो जिस दिन मुझे आपको इस बात का यकीन हो जाता है ना कि मेरे हर काम हर मामले का हिसाब अल्लाह ने लेना है, तो हम यकीन करें इंसानों की कैद से बाहर आ जाते हैं और हम मुतमईन हो जाते हैं और हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं और हम कहते हैं अपने अंदर को संवारो। अब आप देखिए कि एक छोटी सी मिसाल समझिए कि हम घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चमकाते हैं जो लोगों ने देखना होता है, ड्राइंग रूम, और हमारी सबसे गंदी क्या होती है, क्लोजेट्स, अलमारियां, और किसने आना है अंदर, अच्छा कोई बेतकल्लुफ दोस्त आने वाली हो घर में जो पूछती भी नहीं और अलमारियां खोल लेती है, तो गम क्या होता है, करना नहीं चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन अगर कोई करता है तो क्या गम पड़ता है। बाहर ड्राइंग रूम छोड़ो, उसको ड्राइंग रूम में किसने बैठाना है, उसने तो सीधा किचन में धमकना है। आप कहते हैं किचन की अलमारियां साफ कर लो, मेरी क्लोजेट में घुसने से मेरी वार्डरोब देखनी है वो साफ कर लो, ऐसी है ना। जितनी बेतकल्फी होती है, दूर वाले आपकी शक्ल देखते हैं, सजा लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन जो करीब होता है कोई, उसको तो आपकी शक्ल से ज्यादा आपका इखलाक अच्छा लगता है ना। जब आपको मुझे ये एहसास होता है ना कि अल्लाह अंदर बाहर देख लेता है, तो आप जाहिर से ज्यादा बातिन को खूबसूरत करते हैं, दिल पे अल्लाह की नजर है, फिर दिल पाक रखते हैं, पाक दिल पाक जो, फिर आप कहते हैं इस दिल में गीबत नहीं आ सकती, इस दिल में हसद नहीं आ सकता, इस दिल में किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं आ सकती क्योंकि इस दिल में अल्लाह की जगह है। तो दिलों को पाक रखा जाता है, फिर दिल खूबसूरत होते हैं। हर किस्म की नेगेटिविटी से इंसान अपने आप को पाक कर ले। मैंने चंद दिन पहले भी ये लंदन के सेशन में शायद बताई बात, पहले भी जिक्र हुआ हुआ, लेकिन दिलचस्प बात है और आप में से अक्सर डॉक्टर भी हैं तो आपको भी पता होगा। मैं पहले पूछ लेती हूँ आपसे, ये बताइए कि ब्लड के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, एक होता है बी पॉजिटिव, उसकी क्या खूबी है? शाबाश, यही सुनना चाह रही थी। बी पॉजिटिव ग्रुप जिसका है, और इत्तेफाक देखिए मेरा भी बी पॉजिटिव ही है, इसीलिए याद है, वरना मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों से। लेकिन बी पॉजिटिव ब्लड सबको लगता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन होता है ना, वो हर जगह हर हालात में खुश रहता है। अच्छा, कौन सा ब्लड है जिसको और किसी का नहीं लगता, उसको अपना ही लगता है? ओ नेगेटिव। तो नेगेटिव बंदा किसी के साथ खुश नहीं रहता। अब आप बैठें या सोचें, लेकिन वापस आ जाएं। इफ यू आर पॉजिटिव, तो मैं आप सबको क्या कहूं, बी पॉजिटिव। कौन सा बी? खाली बी? बी ईशा बाश, आप तो मेरी क्लास में आ जाएं। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं जो मुझे बुलवाते हैं, या जो मुझे कम बोलने का मौका देते हैं, क्योंकि उनको पता है पहले से बात। बी ई पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जिंदगी में जब तक हमें और आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या होती है? हर एक पे शक। जैसी ये वहां बैठी है, मेरी बात की होगी, ये कपड़े अच्छे पहन के ये शो मार रही है, ये गाड़ी नहीं ली है इसलिए कि मेरी गाड़ी और बुरी लगे, और ये इसने 6 खाने इसलिए पकाए हैं कि मेरी वाह हो। यानी ऐसा बंदा गैरों को नहीं, अपने दोस्तों अपनी साथियों के बीच में और ज्यादा नेगेटिव बन के आता है। अगर मियाँ हंस पड़े तो क्यों हंस पड़े, हंसे नहीं तो क्यों नहीं हंसे, बोले तो क्यों बोले, चुप है तो क्यों चुप है। वो कहते हैं मेरी जान छोड़ दो, तुम जो मर्जी कह लो। वो एक किसी का क्लिप था, तो वो ऐसे ही, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया हुआ है कि क्लिप्स आते हैं ऐसे ऐसे, तो मैं सिर्फ इस सोच से देखती हूँ कि आजकल लोग करते क्या है ना। तो वो एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, तो बीवी का मुंह सूजा हुआ था, तो हस्बैंड कहते हैं आज फिर तुम्हारा मुंह सूज गया, क्या बात है? तो कहती है कि इतनी देर से क्यों रात को आए थे तुम? तो उसने कहा कि ऑफिस में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो ये वो, और कौन था प्रोजेक्ट में? तो वो फिर लंबी चौड़ी बातें शुरू हो गई, वो भी आई हुई थी। तो उसने कहा आई हुई थी, अब वो कोई कुलीग थी, काम करती है, ये उसके ऊपर शक, मुझे पता है सिर्फ तुम उसको मिलने के लिए देर से आते हो। अच्छा ये बताओ फिर ऑफिस से किधर गए थे? तो उसने कहा सीधा घर। सीधे घर आए थे या उसको छोड़ने गए थे घर? उसने कहा लेट हो गया तो उसको छोड़ने गया था। रोने लग गई बीवी ना, तो खैर मियाँ ऐसे बात कहने लगी, आज मुझे सच सच बताओ, सच सच बताओ तुम्हारा तल्लक क्या। खैर तो मियाँ जो थे ना, पहले तो उसके साथ सिचविच हो रहा था कि ये कर क्या रही है। तो उसने कहा तुम, मैं कमाऊ नहीं, ये वो जो भी कहा, मैं इस पर कोई अपना रिकमेंड नहीं दे रही जो उसमें था। तो बाद में कहने लगी कि आज मुझे हकीकत बता दो। तो मियाँ कहता है बेगम जब तुम्हें सब पता ही जो लग गया तो फिर आज मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ। कहेंगी हैं क्या सुनाते हो? कहने लगा मुझे वो हो गई है। कहा क्या हो गई है? कहेंगे मुझे मोहब्बत हो गई है। हाय तुम्हें मोहब्बत हो गई है? किससे हो गई है? उसी का नाम लेती है जिस कुलीग की बात। कहने लगा उससे? कहते नहीं उससे नहीं हुई मोहब्बत, कहती कोई और भी है। खैर अखीर वो जब खुद रहते कराते तो वो कहते हाँ मैं क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर हूं, अब मैं बेगम तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं, तुम मेरा साथ दो। खैर पूछा किससे हो गई है, तो वो घर की मासी का नाम लेता जो इसकी कुलीग थी कह ले। तो वो जब इसने नाम लिया कि मुझे घर की मासी से मोहब्बत होगी, तुम्हें उस चुड़ैल से मोहब्बत होगी, वो कहने का मोहब्बत तो नहीं पता होता ना किससे हो जाती है। तो मतलब कहने का मकसद आप समझ गया ना, कि उसने झूठ ही बोला लेकिन बीवी को ये समझा रहा था कि तुम जब उधर जो शक करती हो तो मैं तो एक मासी से भी मोहब्बत कर सकता हूँ। तो याद रखिए जो क्रिटिकल बंदा होता है ना, उसको हर अच्छी चीज में खराबी दिखती है। जब आपको मुझे ये यकीन हो जाएगा ना कि युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा और अल्लाह की जात को हिसाब लेते जरा भी देर नहीं लगती, तो यकीन करें आप, ये सारी जो मैंने आपको कहानी सुनाई इतनी लंबी नौबत ही नहीं आएगी कि अल्लाह नोज व्हाट इज इन माय हार्ट। सूरत काफ आयत 16 में आता है वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सहु, और हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं वो वसवसे भी जो इसके दिल में आते हैं। इमेजिन करें यहाँ बैठे हुए, यहाँ तो हम खुले बैठे हैं थोड़े से, लेकिन जहाज में तो बिल्कुल सीट के साथ सीट मिली होती है। कोई कह सकता कि मेरे साथ वाला जो सोच रहा है मुझे पता है उसका? बीवी शौहर साथ बैठे साथ सो रहे हैं, उनका नहीं पता चलता कौन क्या सोच रहा है। और वाकई अगर हमें पता चल जाए 100% के दूसरे क्या जानते हैं हमारे बारे में, तो मेरा हम किसी को शक्ल ना दिखा सके। बट وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, हम इंसान की शहरक के भी करीब हैं। अब बताइए जो इतना करीब है फिर उसकी क्या बात है। और सूरत गाफिर आयत 19 में आता है, يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, वो तो खूब जानता है जो आंखें खयानत भी करती हैं, यानी जो गंदी चीज देख ही ली जाती है ना, सिर्फ एक क्लिक देख लिया, कोई एक छोटा सा स्लॉट ही देख लिया आंखों ने जो देखा, अल्लाह को वो भी पता। वमा तुख्फी सुदूर, और जो सीनों में छुपा हुआ है वो सब कुछ उस मालिक को पता चल जाता है। और याद रखिए कि जब एक इंसान इस दर्जे का एक्सपोज है अल्लाह के आगे, तो छुप सकता है? नहीं छुप सकता, उसको अल्लाह ताला पकड़ लेता है। युहासिब कुंभी, वो हिसाब भी ले रहा है, उसको पता भी चल जाता है। अब उसके बाद क्या होगा? فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ, अब ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्लाइमेक्स है इस आयत का। और असल में ये आखिरी पूरा जो सबक है ना, ये इसी एक आयत के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी बात नहीं बनेगी। अब पता लग गया, अल्लाह को पता लग गया जी गड़बड़ है, कोई खराबी है। अब दो में से एक काम करेगा अल्लाह ताला, या तो फयग़फिरु या फिर युअज़्ज़िबु। अगर आप नोट करें ना आयत को, तो अपोजिट पे आया है, गुफरान या गफरा के अपोजिट में अजाब यानी अजब आया है। दोनों लफ्जों की हकीकत को थोड़ा सा देखते हैं। यग़फिरु का लफ्ज़ गैन फारा से है, और गफरा कहते हैं किसी को ऐसी चीज़ पहना देना जिससे वो गलाजत से महफूज रहे। बड़ा खूबसूरत जुमला है, ये आपने सुना नहीं होगा पहले। वैसे तो हमें पता है तौबा इस्तग़फ़ार बख्शीश बख्शना, बट गफरा कहते हैं किसी को ऐसा कोई कपड़ा पहना देना, मतलब आप देखिए ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कीचड़ है गंदगी है, तो कोई प्लास्टिक की ऐसी जैकेट आपको पहना दे कि आप उस गंदगी के असर से महफूज रहें, इस अमल को गफरा कहते हैं। और जब वो चीज़ पहनी जाए तो अंदर की चीज़ छुप जाए, तो फिर अल्लाह की बख्शीश गुफरान क्या छुपाती है, किसको छुपाती है? हमारे गुनाहों को छुपाती है, हमारे पर्दे डालती है। इसी तरह गफर अल मताओ फिल वियाई, अरब लोग कहते हैं सामान को किसी बर्तन में डालकर छुपा देना। छुपाने के साथ साथ गफरा में हिफाजत भी होती है। मिगफर कहते हैं हेलमेट को, वो जो बाइक पे जाते हुए लोग पहनते हैं ना, तो वो मिगफर बन जाती है, यानी इंसान के सर के ऊपर इस तरह एक किस्म की कवरिंग आ जाती है कि किसी हादसे की सूरत में वो उसको तकलीफ नहीं देती। फिर इसी तरह अरब लोग लड़ाई के दौरान एक जिरा पहन लेते थे, लोहे की कड़ियों की बनी होती थी, उसको भी अरब लोग मिगफर ही कहते थे, यानी ये छुपा लेती है इंसान को गर्दन और कंधों पे, ऐसे पूरी चारों तरफ होते कि अगर तलवार वगैरह जाए तो महफूज हो जाए। फिर इसी तरह अलगिफारा किसको कहते हैं? आप में से किसी ने पहनना हुए तो भी देख के, तो ये स्काफ के नीचे बाद लोग एक हेड बैंड पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैप पहन लेते हैं। वो क्यों पहन लेते हैं? कि स्काफ ना हिले, या सर के ऊपर अगर कोई तेल वगैरह कुछ लगा है तो उसका असर ना बाहर आए, उसको भी मिगफरा कहते हैं। आप इतना ही काफी है, इससे ज्यादा और बहुत सारे मानी है, लेकिन बख्शिश के लफ्ज में अब क्या पता चला कि जब एक बंदा कोई गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको छुपा भी लेते हैं, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी कर देते हैं, अल्लाह ताला दुश्मनों के असर से भी उसको बचा लेते हैं। अल्लाह सुभान ताला बंदे के गुनाह करने के बाद उसको तन्हा नहीं छोड़ते, और उस गुनाह के जो बैड रिएक्शन है या उसके इफेक्ट्स हैं, अल्लाह सुभान ताला उससे भी इंसान को बचा लेते हैं। और अल्लाह ताला का नाम अल गफूर अल गफ्फार, इसी तरह सत्तारुल उयूब, ये सारे नाम अल्लाह की बख्शिश से मुतल्लिक हैं। और अगर आप कुरान पाक में देखें ना, तो आपको बहुत सारा इसका इस्तेमाल दिखेगा, कसरत से इस्तेमाल होने वाले दो लफ्ज़ गफूर और रहीम, और आते भी इकट्ठे ही हैं। गफूर के गुनाहों से बचा दिया, जहन्नम से बचा दिया, रहीम के उसके बाद जन्नत भी दे दी। अब बताइए इतनी प्यारी जात को कोई छोड़ के जा सकता है? और ये जो हमारी तौबा है वो भी असल में अल्लाह के लफ्ज़ अलगफ़ार होने के बाद कारामद है ना। हम जितनी मर्जी तौबा करते रहें और अल्लाह गफूर ना हो, गफरा का अमल ना करे, तो तौबा का क्या फायदा? फायदा नहीं। तो अल्लाह की ये सिफत बड़ी खूबसूरत है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो कौमें गलत कामों पे चलती हैं, अल्लाह सुबहान तआला की इसी सिफत की वजह से वो दुनिया में भी अल्लाह के अजाबों से बची रहती हैं। तो जब एक इंसान को शर्मिंदगी के साथ गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ करते हैं, और दूसरी सूरत फिर क्या है, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। फरमाया यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, दूसरी सूरत फिर अजाब है। लफ्ज़ अजाब पीछे भी गुजरा है, आइन जालबा, तीन लफ्ज मैंने आपको तब भी बताए थे, आज भी बताती हूँ, याद रखिएगा। लफ्ज अजबुन का एक मानी होता है मीठा पानी, शीरी, डिलीशियस वाटर। ये भी लफ्ज सूरत फातिर में गालिबन इस्तेमाल हुआ है, हाजा फुरातुन और हाजा अजबुन। ये तो मीठी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। फिर इसी तरह अजियत और तकलीफ के मानों में भी ये लफ्ज आता है। जब ये लफ्ज अजाब की सूरत में आता है तो इसका मानी होता है मिठास को छीनने वाली चीज़। अजाब क्या है कि जिंदगी की मिठास खत्म कर देती है। चीजें मौजूद हैं, औलाद भी है, घर भी है, सोना चांदी भी है, जिंदगी की मिठास चली गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ निकल जाती है जिंदगी से। तो अजाब क्या बनता है कि अल्लाह नेमतों को भी आपके लिए, कहते ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज एक होता है ना, इसका ऑपोजिट कर ले, डिसगाइज इन ब्लेसिंग। कुछ लोगों को अल्लाह बहुत नेमतें देता है पर उनको सूट ही नहीं करती। लोग कहते इसको रास ही नहीं आया, ये घर, ये गाड़ी रास ही नहीं आई, शौहर बड़ा अच्छा था लेकिन इस लड़की को रास नहीं आया। तो ये अजाब होता है, चीज मौजूद है एन वक्त पे काम नहीं कर रही, गाड़ी मौजूद है एन वक्त पे चल नहीं रही, अजाब है। गाड़ी की चाबी है लेकिन अंदर फंस गई है, अजाब है। आज अगर आप ओवरऑल दुनिया को देखें ना तो आपको यही अजाब दिख रहा है कि वी हैव क्वालिटी ऑफ लाइफ बट हमारी जिंदगी में क्वालिटी नहीं, वी हैव लग्जरीज बट जिंदगी में लज्जत नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ और चीज़ होती है और उससे फ़ायदा उठाना और चीज़ होती है। अल्लाह सुबहाना ताला मुख्तलिफ तरह से कौमों को अजाब देता है। गरीब मुल्कों में तो अल्लाह ने भूख के अजाब रखे हुए हैं ना, और बिजली जाने के अजाब रखे हुए हैं ना, और लोड शेडिंग और गैस की शेडिंग का अजाब है ना, उसका लोड है। लेकिन अमीर मुल्कों का अजाब जहनी अजाब है। सब कुछ है लेकिन शौहर पे शक है, शौहर का दिल कहीं और लग गया। बीवी कहती 5 बच्चों की माँ हूँ मैं इसके, अब इसको एक और नजर आ गई जो अपनी बेटियों के बराबर है, ये उसके पीछे भाग गया। ये अजाब है, ये बेदीनी का अजाब है। हर बंदे के साथ अल्लाह का मामला उसके मामले के मुताबिक होता है। अगर शौहर बेदीन है, यानी बेदीन घर है, दीन से दूरी है ना, तो वहां अजाब ऐसे होगा कि बीवी है उसको कोई दोस्त पसंद आ गया, वो उसके साथ चल पड़ी। अपने शौहर में 100 कीड़े नजर आते हैं, दूसरे के शौहर बड़े अच्छे लगते हैं, ये अजाब है। अपनी अच्छी खासी नेक सा बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की अदाएं दिखाने वाली अच्छी लगती, ये अजाब की मुख्तलिफ किस्म है। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अजाब से ये ना सोचे कि जलजला आया और कौम धस गई, सैलाब आए और सारे बह गए, नहीं, ये बड़ा महदूद अजाब का कॉन्सेप्ट है। असल अजाब जो दुनिया में आता है ना वो ये है कि नेमतों की मिठास चली जाती है। खाने मौजूद है खा नहीं सकते, शुगर होगी आप देख के चीज़ें रोते हैं, हाय मैं कैसे खाऊं क्या करूं। चीज़ें मौजूद हैं, घर बड़े बड़े रहने वाले को नहीं, एम्प्टी होम्स, वी हैव टॉलर बिल्डिंग बट शॉर्ट टेम्पर्ड, सुनते हैं ना। तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की अजाब की सूरतें हैं। मतलब कहने का क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला बंदों के साथ दुनिया में मामला करने लग जाता है, फिर दोनों में जो मर्जी करे, और वो ऐसा करता क्यों कि वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अब थोड़ा सा अल्लाह की इस बात को समझते हैं। जब एक इंसान इस तरह का मामला देखता है अपनी ज़िंदगी में तो उसको फिर फिक्र लग जाती है कि मेरे साथ अल्लाह का मामला कैसा है। सीधा सा मामला जैसा हमारा अल्लाह के साथ मामला होता है ना, अल्लाह का मामला हमारे साथ होता है। ये जब आयत उतरी थी ना तो सहाबा कांप गए, हमने तो ऐसी सुनी है रिलैक्स्ड। सहाबा ने जब ये आयत सुनी तो इतना परेशान हुए कि युहासिबकुम बिहिल्ला, हर बात का हिसाब अल्लाह लेगा तो बचेगा कौन। देखिए ना, अगर सिक्योरिटी वाले ईच एंड एवरीथिंग आपकी खोलने लग जाए, आपका हैंडबैग भी खुलवाएं, आपका बैग खुलवाएं, वजन भी करें, चीजें भी देखें, प्रोहिबिटेड आइटम भी देखें, तो डेफिनेटली आप वो फ्लाइट तो मिस करेंगे, तो कौन बचेगा। तो सहाबा इकराम परेशान हो गए, इतने परेशान हुए कि उनको लगा कि ये हमारे साथ क्या बन गई। तो उस पे फिर अगला हिस्सा जो आ रहा है, मैं चाहूंगी कि इस अगले हिस्से का भी खुलासा कर लेती हूँ आपके साथ, ताकि फिर आप पूरे सबक के अंदर कुछ अहादीस और उन चीज़ों को नोट कर सके कि जब ये आयात उतरी तो लोग फिर जब परेशान हुए तो फिर अल्लाह ने उस आयत में अगली बात में फरमा दिया